SBS Audio is supported by advertising.
Need a few minutes to reset? Great Minds is a podcast from SBS that guides you through different meditation styles from around the world. Listen wherever you get your podcasts.
मुख्य समाचारों में महारानी एलिजाबेथ के राजकीय अंतिम संस्कार के लिए विश्व भर के नेता लंदन में, शरणार्थी और शरण चाहने वाले छात्रों के लिए टर्शरी शिक्षा की बेहतर पहुंच का आह्वान, और ऑस्ट्रेलियन ग्रेस ब्राउन ने विश्व रोड साइकिलिंग चैंपियनशिप में जीता रजत पदक। नमस्कार, लीजिए प्रस्तुत हैं समाचार विस्तार में अनीता बरार के साथ। प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीसी महारानी एलिजाबेथ के राजकीय अंतिम संस्कार में भाग लेने के लिए लंदन में विश्व नेताओं में शामिल हुए। पिछले 24 घंटों में श्री अल्बनीसी ने वेस्टमिंस्टर में रानी के ताबूत के दर्शन किए और बकिंगम पैलेस में किंग चार्ल्स से मुलाकात की। उन्होंने अनुभव को एक महत्वपूर्ण अवसर बताया।
It was a very emotional experience. The queues of British citizens and other visitors to want to pay tribute and pay their respects to Queen Elizabeth was very momentous, and you could feel the raw emotion in Westminster Hall.
श्री अल्बनीसी संसद भवन में स्मारक सेवा और गुरुवार को सार्वजनिक अवकाश से पहले बुधवार को ऑस्ट्रेलिया वापस आएंगे। एक ओर जहां लाखों लोग सम्मान देते हुए ब्रिटेन की सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली महारानी के अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे हैं, स्वदेशी ऑस्ट्रेलियाई 1000 साल पुराने राजशाही के तहत अपने दुख के अनुभवों के बारे में बोल रहे हैं। एलिजाबेथ के शासनकाल के दौरान ब्रिटेन के अधिकांश साम्राज्य के निकलने के बावजूद ब्रिटिश साम्राज्य अभी भी कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड सहित 14 अन्य क्षेत्रों के लिए प्रमुख है। न्यू साउथ वेल्स एबोरिजिनल लैंड राइट्स एसोसिएशन के क्लेटन सिम्स्टम पिट का कहना है कि ऑस्ट्रेलिया के उपनिवेशीकरण में ब्रिटिश राजशाही की भूमिका और ऑस्ट्रेलिया में प्रथम राष्ट्र के लोगों पर इसके प्रभाव को नहीं भूलना चाहिए।
Well, it's sad for them. While they're mourning their queen, we're mourning our people. We're mourning our old people. We've had enough, and it is an insult to declare at the click of a finger a day of mourning on the 22nd of September. We've been calling for a day of mourning since 1938, and while they mourn their queen, we will mourn our people.
ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान के बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए और $3 मिलियन की सहायता देने का वादा किया है। बाढ़ का पानी जो देश के एक तिहाई से अधिक तक फैल गया है, उसको कम होने में महीनों लग सकते हैं। डेंगू बुखार के मामलों से मरने वालों की संख्या 1500 के करीब पहुंच रही है। एसबीएस उर्दू का रेडियोथॉन सहायता प्रयासों के लिए धन जुटा रहा है। रेडियोथॉन के दौरान बोलते हुए उद्योग और विज्ञान के फेडरल मंत्री एड हुसिक ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया अपना समर्थन बढ़ा रहा है।
We have all been staggered by the truly devastating floods in Pakistan. 33 million people affected, homes, shops, businesses, crops either severely damaged or completely destroyed, and the death toll has been heartbreaking. Australia stands with Pakistan through these very tough times.
फेडरल सरकार से वर्तमान और हाल के वर्षों में आए शरणार्थी और शरण चाहने वाले पृष्ठभूमि के 12वीं कक्षा के छात्रों को स्थायी वीजा देने के लिए अपने चुनावी संकल्प को पूरा करने के लिए कहा जा रहा है ताकि छात्रों को टर्शरी शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए घरेलू छात्र शुल्क सहायता का उपयोग करने की अनुमति मिल सके। लगभग 100 छात्र प्रभावित हैं और 19,000 लोगों के उस बड़े समूह का हिस्सा हैं जो बोर्ड से आने वालों के लिए बनी सरकारी नीति के तहत एक दशक से टेम्परेरी प्रोटेक्शन वीजा पर रह रहे हैं। डॉ सैली बेकर शिक्षाविदों और छात्रों के एक नेटवर्क जिसे रिफ्यूजी एजुकेशन स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप कहा जाता है उसकी सह अध्यक्ष हैं। वो शरणार्थियों और शरण चाहने वालों के लिए टर्शरी शिक्षा तक पहुंच में सुधार करने के लिए काम कर रही हैं। वो कहती हैं कि इस स्थिति का मतलब है कि कई बारहवीं के छात्र बड़ी फीस के कारण टर्शरी एजुकेशन तक नहीं पहुंच पाएंगे।
We'll be calling for universities to maintain and, in fact, increase their scholarship provision for those people who will remain locked out of higher education opportunities for the longer term. So it's really important that Labour make good on that promise to move people on temporary protection into permanent protection so that we can give those people a chance to invest in their futures and to take the study pathways that they might want to take.
इमिग्रेशन मंत्री एंड्रू जाइल्स ने वादा किया है कि सरकार अस्थायी सुरक्षा वीजा पर लोगों को स्थायी सुरक्षा देने के अपने वादे को निभाएगी, लेकिन ये कब होगा इसके लिए एक समय सारणी की रूपरेखा तैयार नहीं की गई है। जलवायु परिवर्तन मंत्री क्रिस बोवेन ने 5 दिनों के लिए अमरीका की यात्रा करने की योजना की घोषणा की है। ऑस्ट्रेलिया खुद को नवीनीकरण ऊर्जा महाशक्ति के रूप में स्थापित करना चाहता है। श्री बोवेन संयुक्त राष्ट्र महासभा में जलवायु सप्ताह में भाग लेंगे और पिट्सबर्ग में स्वच्छ ऊर्जा मंत्री स्तरीय बैठक में ऑस्ट्रेलिया का प्रतिनिधित्व करेंगे। वो वाशिंगटन डीसी में सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज में एक मुख्य भाषण भी देंगे। उनका कहना है कि ये स्पीच इस बात पर प्रकाश डालेगी कि किस तरह ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अपने जलवायु उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए एक साथ काम करेंगे। क्षेत्रीय विक्टोरिया में आज सुबह मामूली भूकंप आया। विक्टोरिया स्टेट इमरजेंसी सर्विस का कहना है कि 2.4 की तीव्रता वाले भूकंप को फ्रैंकस्टन और क्रेनबर्न के आसपास के निवासियों ने महसूस किया जिसका केंद्र पोर्ट फिलिप बे के आसपास था। एसईएस का कहना है कि उसे भूकंप के बाद सहायता के लिए कोई कॉल्स नहीं मिली हैं, जबकि जियोसाइंस ऑस्ट्रेलिया का कहना है कि उन्हें निवासियों से 100 से अधिक सूचनाएं मिली हैं। और भारत में एनडीटीवी द्वारा प्राप्त की गई नई सैटेलाइट इमेज इस बात की पुष्टि करती है कि चीनी सैनिक पूर्वी लद्दाख में गोगरा हॉट स्प्रिंग में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पार अपने कब्जे वाले स्थान से 3 किलोमीटर पीछे हट गए हैं। ये वापसी पारस्परिक विघटन प्रक्रिया का हिस्सा है जिसने चीनी सेना को उस क्षेत्र से वापस आने को प्रेरित किया जहां भारतीय सेना 2020 में गश्त करती थी। 12 अगस्त 2022 की पूर्व विघटन छवि से पता चलता है कि चीनी सेना ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पार एक क्षेत्र के पास एक बड़ी इमारत का निर्माण किया था जहां एलएसी के पार 2020 में चीनी घुसपैठ से पहले भारतीय सेना गश्त करती थी। यह इलाका खाइयों से घिरा हुआ था। 15 सितंबर की एक तस्वीर से पता चलता है कि इस इमारत को गिरा दिया गया है और निर्माण के मलबे को इस साइट से उत्तर में एक अस्थायी स्थिति में ले जाया गया है। इस साल 17 जुलाई को कोर कमांडर रैंक के दोनों पक्षों के सैन्य अधिकारियों के बीच 16वें दौर की बातचीत के बाद भारतीय और चीनी सेना के बीच गोगरा का विघटन हुआ। और अब बात ऑस्ट्रेलियन डॉलर की। ऑस्ट्रेलिया का एक डॉलर अमेरिका के 67 सेंट और भारत के 53.44 रूपये के बराबर है। खेल समाचारों में ऑस्ट्रेलियन ग्रेस ब्राउन ने विमेन्स टाइम ट्रायल में रजत पदक जीता है। ये विश्व रोड साइकिलिंग चैंपियनशिप में पहली इवेंट है। ब्राउन ने 44 मिनट और 41 सेकंड का समय लिया, यानी 45.923 किलोमीटर प्रति घंटा की आश्चर्यजनक औसत रफ्तार के साथ। उन्होंने स्टैन स्पोर्ट्स पर कहा,
It was a technical course, a lot of on-off, not much time to really look at your power and think about your pacing. You just had to go hard where you could and recover where you could. So, yeah, I think in the end, despite not really looking at what I was doing power-wise, I paced it really well and, yeah, I felt strong all the way until the end.
और मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार कल यानी सोमवार को पर्थ में बौछारें, अधिकतम तापमान 17 डिग्री, न्यूनतम 9 डिग्री सेल्सियस। एडिलेड में मुख्यतः धूप रहेगी, अधिकतम तापमान 19 डिग्री, न्यूनतम 7 डिग्री। मेलबर्न में आंशिक रूप से बादल, अधिकतम तापमान 16 डिग्री, न्यूनतम 8 डिग्री। होबार्ट में आंशिक रूप से बादल, अधिकतम तापमान 15 डिग्री, न्यूनतम 8 डिग्री। कैनबरा में मुख्यतः धूप रहेगी, अधिकतम तापमान 16 डिग्री, न्यूनतम 4 डिग्री। सिडनी में भी मुख्यतः धूप रहेगी, अधिकतम तापमान 22 डिग्री, न्यूनतम 12 डिग्री। ब्रिस्बेन में धूप रहेगी, अधिकतम तापमान 29 डिग्री, न्यूनतम 13 डिग्री। और डार्विन में धूप रहेगी, अधिकतम तापमान 34 डिग्री, न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए।
Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.